कृष्ण ब्रज में ही रहे केवल तो मथुरा में भी उनके भक्त हैं, द्वारका में भी भक्त हैं और जगह में भी उनके भक्त हैं, वहां भी तो जाना पड़ेगा कि नहीं। ये जथान नाम प्रपत्न थे काम प्रचल से नाम मैंने प्रतिज्ञा की। कुछ उनके कर्तव्य भी हैं जगत में, प्रेम का आस्वादन करना है और रसिक भक्तों के साथ में उनके लीला विलास इत्यादि हैं, किंतु फिर भी और भी तो कुछ कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कुछ बात भी हो गए, गोपियां जो रो रही हैं तड़प रही हैं तो मछली की भांति, अब कृष्ण से रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उनका चित्त भी अत्यंत संक्रमित हो गया और ये दृश्य देखा नहीं जाता। उन्होंने अपने को थोड़ा सा इशारा किया, सह न सके इसलिए, ऐसा नहीं कि वो क्रूर बन गए, सह नहीं दृश्य को देखने में वो अपारक हो, इसलिए उन्होंने इशारा किया। यहाँ पर कृष्ण यद्यपि वो भाव से विभावित होकर के प्रवृत्त हुए, किंतु बलदेव जी और अक्रूर के साथ में थे, इसलिए कहीं तो कृष्ण के इस हृदय जो उनका द्रवित हो गया है ये दोनों न समझ पाए इसलिए क्या किया, चित्त द्रवित हो रहा था, मन अब रो देंगे, वो भी विलास करेंगे गोपियों की भांति, किंतु कर नहीं सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी विजातीय देकर के अपने भावों का संवरण करते थे, जैसे वो
अढ़ाई ग्राम में
जा रहे हैं और शुद्ध स्वरूप के साथ में रूप जी थे, महाप्रभु जी थे और साथ साथ में वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य हैं वास्तव रस के रति, इसलिए वो मधुर रस के भाव को नहीं समझते, इसलिए विजातीय हैं, जगति प्रेमी हैं, भक्त हैं, कहाँ उन्नत बात करता रखते। कभी महाप्रभु जी उनके सामने गोपनीय रखा, ये सब ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों का साथ किया, कभी गोपियों का यह भाव उनमें संक्रमित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उनकी दीक्षा शिक्षा की गई है, दीक्षा शिक्षा की। जब तक कि ऐसा कोई न हो, ऐसा प्रेमिक हो जिसमें गोपियों का यह भाव हो और उससे दीक्षा शिक्षा न हो तो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा था, अपने माता पिता की सांत्वना के लिए नहीं, वो नहीं हो सकता है उद्धव जैसे आदमी के साथ। गोपियों को उद्धव जी के बातों से और ताप अधिक बढ़ गया और मरने लगी, उद्दीपना होने लगी, इसके लिए जो गोपियों को सांत्वना होगी, माता पिता को सांत्वना होगी, इसके लिए नहीं भेजा। ये साधारण लोग जानते हैं कि माता पिता उनके अर्थों की व्यंजना ऐसी है कभी, जैसे कि साधारण लोग नहीं समझते, वो गोपियां ही समझते हैं। या उष्ण मंत्र में जो दीक्षित रहने वाले रूप गोस्वामी इत्यादि हैं जो साक्षरियां हैं वो क्यों समझेंगे, तो इस विषय में जिनका संस्कार नहीं हुआ वो कैसे समझेगा। इसलिए उद्धव जी को भेजा भी तुम्हारा संस्कार हो, सब सभी उद्धव जी को संस्कार होने पर भी ये नहीं हुआ जी गोपियों की सच्चाई बन जाऊ, बस गोपियों की चरण दूर के लिए कुसुम सरोवर में आज भी उनके चरणों की रंग की सेवा नहीं आए तो ऐसे ही हो जाएगा। इसे अद्वैतवादियों का संग करने से, मायावादियों का संग करने से या जिनको ये सचरी का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के जिसमें वास्तव्य की भावना है उनका संग करने से ये नहीं होगा। जिस कथा के लिए गोस्वामी का ये भाव है वो होने से तब ये चीजों को समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन भावों को विशाखा जी की कृष्ण के लिए भी यह अवगम्य है। जल धर्म में ऐसा लिखा, कृष्ण रथ से समुद्र है, रथो वैचार, कृष्ण अनेक रथ हैं और एक रथ है, एक रथ में वो आत्मरथ का अनुभव करते हैं। सब रथों के जो विषय हैं कृष्ण उस विषय को के रूप में उनका साधन करते हैं। यशोदा मैया जी का बात लाड प्यार जो करती है उसको तो समझते हैं, क्योंकि यशोदा की जिस भावना से लाड प्यार करती है इसको नहीं समझते उनके अंदर में क्या भाव। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं किंतु किस भाव से राधा जी रोषित हो जाती हैं, कैसे उनको मान होता है कैसे उनका अनुराग होता है, माधव इत्यादि की दशाएं होती हैं, ये कृष्ण के लिए ये बहुरथ है। बहुरथ मैंने अपना आत्मरथ और उन गोपियों का भावों का साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के राधा जी का भाव उनको लिए अगम्य है, अपरिचित है, ये बहुरथ है। उन गोपियों के जो भाव है उनको नहीं जानते, ये कैसे होगा? उनके जो अपने जो मंदिर इत्यादि हैं, इस रथ में जो विभावित शिष्य वाले हैं उनके लिए होगा। अब विशेष करके जिनको गोपाल मंत्र नहीं मिला, जिसको काम गायत्री नहीं मिली, ये रहस्य सब है। इसलिए ये सब के द्वारा मंत्र की स्तुति से इन चीजों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। लाख जन्म लाख चेष्टा करें, जिनको ये भाव ही नहीं वो कहाँ से दे सकता है? उनके संग से नहीं हुआ, विद्वानों के संग से शब्दों का ये ऊपर का जो रूप अर्थ है वो मालूम होगा। उसकी अभी व्यंजना उसके भीतर में क्या छिपा है ये अनुभूति का विषय, केवल व्याकरण से अर्थ करेगा वो क्या बतला सकता है। एक आदमी गीता पढ़ रहा और गीता पढ़ते पढ़ते रोता है, ज्ञान कैसे करता है? अनुसार विषय का कोई भी बात नहीं, ऐसे पढ़ता है रोता है। और पंडित लोग अनुसार विचार का उच्चारण करते हैं, बड़े भाग से पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी गए उससे पूछा, भाई आप गीता पढ़ते हैं पर रोते क्यों? बात क्या, मैं निरक्षर आदमी हूँ, मैं कुछ अर्थ नहीं जानता, मैं जब गीता सुनता हूँ तो देखता हूँ कि कृष्ण का अर्थ करा है, परंतु विषादग्रस्त और कृष्ण उनको समझा रहे हैं, ऐसे प्रेम भरी बातों से समझा रहे हैं, ये सुनकर के हमारा चित्त दर्दित हो जाता है, मैं अपने को रोक नहीं पाता। यही सुन था, यही अनुभूति है। इन पंडितों को मूर्ख वक्ता करने वाले स्वामी विचार इत्यादि का उनसे ये भाव नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर कारण है कि वो किसी प्रकार की भोगियां हैं अपनी भावना को कोई गिर पड़े, कौन भी पड़ी राधिका उसमें जो कम है वो अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, चित्र रिक्सा मूर्ति की भांति, जैसे ये मूर्ति बढ़ी है, ठीक भक्ति विनोद ठाकुर है, सिद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं, ऐसे मूर्ति की भांति जो मूर्तियां आगे बढ़कर थे रथ को पकड़ लिया, उनसे कम उनकी अनुभूति है ना व्यस्त, इसलिए उसको पकड़ रही है और रो रही है, उनको होश है और उनको कृष्ण अपने इशारे के कारण आया से मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ कल तक, मैं अभी जा रहा हूँ आज कल, और कल मैं वहां रह करके काम समाप्त करके परसों में लौट आए थे। दौड़ते मैंने जिनको खुश था अपने वचन रूपी रूप से उनको कहा, और वो जा करके ललिता इत्यादि जो अभी चित्र लिखित खड़ी है या जो गिरी हुई पीछे जा करके वो कहेंगे कि कृष्ण ये बोल करके हमको गए हैं, जो उनसे कह दो क्योंकि अभी तो सुन नहीं सकती, वो तो एकदम दुखित है, इसलिए उनको कृष्ण कहने से भी काम जाएगा, काम ले जाएगा वो तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनको कुछ होश है, जिसको कुछ विरह का ताप उतना नहीं है, जिनको मादन मुदन का भाव नहीं है, वो लोग कुछ सुनते हैं। उनको कृष्ण ने कहा कि बस मैं आज जा रहा हूँ, कल रस्ता से परसों में मुझे मैं जरूर लौटूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परसों लौटूंगा, आयत से मैं अब कृष्ण चले गए, ये भूल उड़ रही है, पहले रथ दिखा कृष्ण पीछे मुड़ करके उनके तरफ में देख रही दिखा भरी रहे जिन्हें की बैठा किसे समझाए, बलदेव जी को समझाए, नाथुरु जी को समझाए, उनकी जय दशा कौन समझेगा, जिन गोपियों के लिए कृष्ण का हृदय कैसे तड़प रहा है, ये कैसे समझाए, क्यों नहीं समझा सकते? यदि वही अनंग मंजरी होती तो कुछ समझ जाते, बदल प्रयोग में बासल दास्य सख और बास्तल नहीं है, इसलिए ये नहीं समझ सकते इनके भाव, इसलिए बलदेव जी से नहीं कहा, अपूर्व से कहेंगे, अपूर्व से अपनी आंखों को ऐसे पूछ लिए हूँ, छिपा करके पूछ लिए हूँ, ऐसे गंभीर एकदम बच किसान किस हृदय उनका एकदम कैसा हो रहा है, क्या आखिर दबदबाई में मुख करके और रोटियों के गोपियां देख रही हैं, अब इनका चित्त द्रवित हो गया है, आ जाए अभी लौट, अभी जा रहे हैं चित्त के लौट आए। जब तक खड़ी रही जबकि धूल दिखाई थी, धूल भी शांत हो गई, अब ये निष्कुट नहीं आएगा, थकान हो गई निराश, निराश होने के पश्चात वहीं पर बैठ गई हुई। दूसरी गोपियों ने उनके और दिन कोई चना पीरा नहीं, या फल वाले जो है आकर के किसी प्रकार के वो उनको लेकर के जा रहे हैं, इसी के लिए कारण सा निराश का निर्दत्व तो गोविंद देवी बात। और जो गोपियां थी वो क्या हुआ, कृष्ण के विरह में तड़पती हुई वो गान करती हुई मूर्छित हो गई, गोविंद छात्र के गिर गई, उसको होश नहीं रहा, कुछ चित्र की भ्रांति गई। कृष्ण ने उनको उनका जो विश्वास शब्द ये जो आया के मैं आऊंगा आ रहा हूं, फिर उनको सुनाई पड़ा, किसको सुनाई पड़ा, जिनका हृदय गठित कुछ कम उन लोगों ने सुना, तो ये क्या हुई, ये सुन लिया क्या हुई, यही दौ ये दूसरे एक था कृष्ण का वचन जो निकला बचन रूपी नाक को जली धूती
मिलने
से ही उनका प्रणय हुआ, उसमें धूती की जरूरत नहीं हुई, प्रणय हम लोगों का हुआ राधा जी का रहे, अब धूती की क्या जरूरत है, अब फिर हमें ये धूती क्या करेगी, इसलिए यहाँ पर काम मिला था निश्चित ऋतु, अब गोविंद अभी नहीं आएगा, किंतु आशा ले रहे क्या कृष्ण कभी झूठे नहीं हो सकते, आज तक उन्होंने जितना वादा किया है
सब पूरा किया,
वो सत्य प्रतिज्ञा है, धीर ललित धैर्य नायक,
धीर
ललित माने नायक माने क्या, प्रति झूठ होने पर भी उसके प्रति बात को जो कहते हैं उसको पूरा, इसलिए ठीक है रामचंद्र जी ठीक है किंतु ललित नहीं है, वो धीर उत्थक है,
धीर शांत धीर
चारों प्रकार के नायक है, धीर ललित धीर शांत धीर उद्धव
धीर
उदात्त,
फिर छह अनुभव,
इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक क्षीण आशा लेकर, अब इस समय मैं गया था कोई और किसी और का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया, किसी मैया का, और मैया रोते रोते पागल है और कह रहे कि हमारा बेटा मरा नहीं वो आएगा, ये क्षीण आशा है कि वो गया है और वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, इसीलिए प्राण धारण कर रही कि तो लड़का तो गया है मर, उसको विश्वास नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं जैसे उस मरा लड़का तो मर गया, नहीं भाई वो मरा तो नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए पेपर में आ रहा सुभाष चंद्र मरे नहीं अभी है, अच्छा ये बतलाओ तो 100 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई होती वो बड़ा है तभी एक फिर आता है, तो ऐसे ही यदि अपने पीड़ा के लिए प्राण शांति के लिए गोपियां सोच रहे हैं जब कह करके गए हैं आज तक उन्होंने वादा निभाया है इसलिए आएंगे, इसलिए उस समय तो कृष्ण चले गए धूल भी उठती हुई चली गई और नहीं आए, तो अब सोच रहे हैं जिससे वो जब गए किसी गंभीर कार्य के लिए तो कार्य को पूरा करके जरूर आएंगे, आए से जब कहा आएंगे, इसलिए घर को लौटी, अच्छा अब कल के लिए देखा रहे फिर कल का लिए अब आते होंगे, फिर जैसे आज नहीं आया रात भर बेता रही देती रही और कैसे उनके प्राण बच रहे हैं, प्रिय चेतन निन्नु गायन से अपने चेतन कृष्ण के लीला क्षेत्रों का गायन कर रहे हैं, तो क्या कति होंगी जस्यान राग ललित
तो
इत्यादि का ध्यान करते गोविंद दामो देव इत्यादि का ध्यान करते जैसे है ना कृष्ण रमण श्रेष्ठ
रमण कृपण
ध्यान करने
हे देव
हे देव रात में जैसे उनके साथ में हुआ, उनके आत्मों को पूछे, उनके श्रम बिंदुओं को पूछा, उनके मुंह के धूल को पूछा, उनके चरणों में नकुट पहना रहे हैं, किठोरिया उनसे कर रहे हैं, चार वो रहस्य संपितो भिक्षयोदयम सहसानम नैव वीक्षणम विहरन्त्यते ज्ञान मंगलम। मन कली जाता हूँ, ये सब चीजें कोई ज्ञान कर रही है कि कृष्ण कैसे हमसे सीख हो रही है, और ये सब इन तरह बातें कर और रो रही है और श्लोक बद्ध अपने आप कर रहे हैं। इसके लिए श्लोक और पद्य नियम को बनाना पड़ता, अपने आप सरस्वती के जीवा में, वो तो खुद सरस्वती का अधिष्ठात देवी श्रीमती राधिका है, ये अपने आप ये जो क्या है कि अभी कम व्यास में नहीं लिखा,
राधा जी समाधि में देख करके लिखा,
समाधि में उन्होंने जो कहा है वो उसी को ये कर रहे हैं, इसे राधिका जी के मुख से या गोपियों के मुख से ये निकले, गोपी जी ये व्यास जी का व्यक्तित्व नहीं है, लोग समझते हैं ये भूल है, उन्होंने समाधि में ये सुना और सुन करके ये गोपी उनकी बहन भी ये गोपियों की जो बातें हैं, ये सब व्यास की और किसी का लिखा हुआ नहीं, ये गोपियों के मुख रहे हैं, उन्होंने समाधि में इसका अनुभव करके अवसरण किया सभी का, ये श्रीमद भागवत क्या है
समाधि
समझना, जो व्यास देव जी ने इसको लिखा नहीं समझ किया उसको समाधि में सुना सुन करके उन्होंने कर दिया। तो विष्णु को अहनी निंदु गायन का विष्णु को यहाँ सब है, विष्णु मैंने कब तो गायक हो रहे हैं, जब कृष्ण का गायन करती हैं और समझते हैं कि कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे आत्मों को पोछ रहे हैं, हमें सांत्वना दे रहे हैं कृष्ण अपने आत्मा से, उसमें विश्व करते वो मानिनी बन जाती है, अविश्वादनी भत्रिका बन जाती है, उसी समय कृष्ण है नहीं किंतु वो देख जाता देख रहे हैं, उसे ऐसे भाव अष्टशास्त्री विकार हुए हैं जो सब इत्यादि लोगों के लिए समझना भी कठिन है, कृष्ण भी कभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी, इसलिए फिर हमें उनके क्षेत्रों का अध्ययन कर, इसलिए कभी कभी विशोक मालूम कर, जैसे उनको शोक नहीं किंतु ज्ञानी कृष्ण थोड़ा सा बंद हो जाता है और सामने कृष्ण को नहीं देखती है तो फिर क्या हो जाता है, एकदम आग में तड़ में तड़ मछली चली कभी भगवान अभी संप्राप्त तो रामापुरो रथेन वायु देवी नालीन जी अभिनाशी ने भगवान जी भगवान को इसलिए कहा, यहाँ पर बहुत मरते का विशेष भाव है, यहाँ पर कृष्ण गोपियों के भाव में विभावित होकर के मधुर रस को प्रकाश कर रहे हैं, किंतु ये मथुरा जा रहे हैं उनको भूल करके ये भगवत्ता एक ऐश्वर्य धाम की तरफ जा रहे हैं ना, जाना उचित नहीं था, वृंदावन बड़े को छोड़ करके गोपियों का प्रेम माता पिता का स्नेह छोड़ करके जाना संभव नहीं था, किंतु चूंकि भगवान है उनमें ऐश्वर्य भी भाव है, इसलिए कंस को मारना चारों को मारना और सब पशुओं का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा भी करनी है आत्मधर्म, इसलिए उस समय में ये ऐश्वर्य आया, यह ऐश्वर्य भाव संक्रामित होने के कारण ही मथुरा जा रहे, इसलिए भगवान है कभी यदि नंद पुत्र होते गोपीकांत होते राधा रमण होते तो जाते, इसलिए उनके लिए कहा कि देखो ऐसा मत समझो वो भगवान जी, उनके लिए तो और भक्तों के भी भाव देखे हैं ना, उनको ये भी देखना है कि कंस को मारना, हमारे माता पिता जो ऐश्वर्य देवदास के लिए हैं हमारे उपासक हैं वो बेटियों हथकड़ी में बंद हैं, उनके छाती पर चक्की रख करके दाल पीसा जा रहा है, अपने पैरों के अंगूठे से उसे मारता है, अपमानित करता है, इसलिए हमारी जरूर चलना है, द्वारका में बहुत सी रानियों के साथ में विवाह करना है, वहां पर असुर जैसे काल जमन है और जरासंध है, तो चतुर्भुज कौन बना था? इनका संहार करना है, वो बंदर बिल्ली इत्यादि का दंश करना है। ये तो ऐश्वर्य में ली जा रहे हैं, इसलिए उसको करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भगवान अपि भगवान होते हुए भी वो जा रहे हैं। राम अपुर तो जुटो, यहाँ तो राम है और अपुर, अपुर कौन रस के भक्त है? दास माने कौन? दास ब्रज का दास नहीं, ऐश्वर्य जुट। इसे ऐश्वर्य युक्त जो दास है उसके सामने ये मधुर गोपियों की भावना को मैं कैसे मैं रोऊं और कौन से गोपियों से मैं बहुत देर में आते हूँ, ये कैसे कह सकते? ये संभव बद्र जी से भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को कहा जरा से ही तरफ हम उसे सहा नहीं जाए, बस अरे बाई देगे ना बाई बे तरफ उड़ने लगा कैसे घाटों के माध्यम से इस तरह से उधर गोपियां आकर के रास्ता चक्का का पहिए का चिन्ह देकर के कहीं पीछा न पाए, इसे कभी घाटों से कभी इधर से कभी उधर से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बाई देर से लेकर के चलते कालीन जी अपन आते हैं। कालीन जी ये कालीन जी मेरी जमुना है, कालीन जी कालीन के पर्वत से निकलती है, उनका पानी कैसा है? कृष्ण जैसा है। क्यों कृष्ण जैसा? गोपियों को नैनों में बरसते हैं, उनका काजल जमुना में गिर कर कृष्ण का अंग कैसा है? नील मणि के समान, इसलिए उन अंगों का अंग राग भी जमुना में मिल करके नीचे से नील देखता है, क्योंकि जब उठाएंगे तब कैसे एकदम उज्ज्वल दिखता है, इसलिए उज्ज्वल नील मणि के समान है। इन्हीं के आधार पर उसको समय में उज्ज्वल नील मणि की रचना है। उनके भावों को ने? वो भाव क्या है? ये जो उज्ज्वल नील मणि जो भाव जो है श्रीमती राधिका के पीछे, यही उज्ज्वल नील मणि। कृष्ण के लिए उज्ज्वल मणि है ऐसा नहीं, वो तो उत्प्रेक्षा में उनको लगा सकते हैं, माने तुलना के लिए कृष्ण को नील मणि कहते हैं, किंतु नील मणि है क्या? राधिका जी के कृष्ण के प्रति ये जो मदन नाथ और माता नाथ से ये स्वभाव, ये उज्ज्वल नील मणि है। ये जसोदा इन में कालीन जी ने ये कुछ संक्रमित हुए हैं उनके भाव, इसलिए वो भी कालीन जी दिखती है कृष्ण जैसी है। कैसी है वो कालीन जी? अब नाश है, अब को नाश करने वाली है। अब मैंने कृष्ण जी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके क्या करें? सत्रो उपस्पृश्य सविता पीवा मृत मणि पर हम ंडम अनुप्रज्ञ सरामो रथम आविश। कृष्ण वहां पर रथ से उतरे बलदेव जी के साथ और उतर करके स्वामी जमुना जी के किनारे पहुंचकर सरिला पिता शरीर का आचरण किया, पान किया अपने अंजलि के पास और आचरण किया, कैसे मृत मनुष्य समस्त अवो को नाश करने वाली है। ये कृष्ण ने सोचा आज गोपियों के देर में गौ ये दुख है ना, तो दुख किस कारण से होता है? असुर के कारण, के कारण ये दुख होता है, देह पापी तो होता नहीं। तो यहाँ पर विरह जो दुख है ये पाप ताप के लिए नहीं होता, किंतु इससे खूब गुण अधिक प्रभावकारी। कृष्ण ने सोचा कि आज विरह में व्यतीत हो रहा हूं, ये ताप जाता नहीं है, मैं किससे कहूँ किससे करूँ, कोई हमको सांत्वना देगा। ये जमुना सविता ये राधा जी की शक्ति, यदि इनका मैं स्पर्श करूँ इनका पान करूँ हमारा भी अब अत विरह का जो ताप है ये कुछ प्रशमित हो जाए। इसलिए उत्तर करके जमुना के पांव फूल पर उत्तर करके उनका जल पान किया और अपने इस पर छिड़का, इसलिए हमारा ताप वो ताप क्या है कृष्ण का? पिताजी तो साथ में है, सखा लोग भी साथ में है, इसलिए उनका विरह नहीं। पीछे चलते किन का विरह? जिनसे कहा जो तुम कह देना आए थे उनके लिए नहीं, जो विरह प्रतीत होकर तुम वहां पर छठ कराते हुए गिर गई मुझे आतुर होकर उनके लिए। तो ये सोच रहे हैं कहो जमुना जी का स्पर्श से आसन से हमारा ये ताप दूर हो जाए, इसलिए जमुना के किनारे बड़े बड़े सुंदर वृक्ष होती है, पर सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं, तमाम वृक्ष हैं, आम के हैं, कदम्ब के हैं, नीप हैं और उस तरह के हरे पड़े हैं। इसलिए वृक्ष संघ संघ माने समूह, वृक्षों से समूह से भरपूर ये जमुना है। तीर रम नरम हमार गो कदम्ब गोपिता दिव्य कंधवा कदम्ब उन तीर गंधवा गंध जन्म गंध रंजनी ऐसी ये जमुना जी है। जमुना को देखकर तो उनको शांति आई और वहाँ उतर करके जल स्पर्श करते हैं, मालूम है ये कुछ हमारा हृदय था, कुछ दुख उपशम हुआ। उतर करके राम के साथ में और फिर रथ में बैठे गए, फिर रथ में बैठे किसी अपने दिल तरह के अपनों ने क्या किया राम के अलग उनके साथ में पूछ रहे थे और उनके साथ में आचरण नहीं किया, क्यों योग्यता नहीं है इस जगह पर से भूलता करके खड़े रहे। दूसरा उनको भय है कि कोई शत्रु न आ जाए, बाकासुर बकासुर कंस के जितने अंतर हैं उनको भय है कि मैं लेकर के आया हूँ, जब तक यहाँ पर मथुरा में न पहुंचा दूं काम नहीं हो जाए तब तक बीच में कोई सी बाधा आ सके कृष्ण बंदे के ऊपर में आक्रमण न कर सके, इसलिए पहरा देने के लिए से पास में बैठे वो खड़े रहे उन पेड़ों की छाया में। अकृत जमुना में जाकर के बंदे जी आचरण किया, फिर उनको कहा कि आप रथ में बैठिए मैं अभी आ रहा, क्यों उनकी सुरक्षा के पीछे रथ का ध्वंस बांधे और मथुरा जा रहे हैं ना, अपू जी किस गए आए थे रथ में ध्वंस बांध अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, साथ में कोड़ा भी है घोड़ों को चलाने के लिए तो वहां पर रखे हैं। और दूसरी बात जमुना के किनारे में जहाँ पानी है वहां पर कीचड़ भी हो सकता है और हो सकता है कि कांटे कुछ भी हों, विशेषकर के ब्रज में कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो दिखते नहीं है गोकुल, वो पैर देंगे कपड़े में यहाँ से यहाँ तक फट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पैरों में यहाँ से यहाँ तक एकदम लग जाएंगे, छोटे छोटे पतले पतले वो चूर जाएंगे, वो निकलेंगे चूर करके उसी में रह जाएंगे। हम लोग गुरु जी के साथ में सत्संग में ये करते इसे कोई कोई चप्पल कोई कुछ पहन लेते हैं
गोकुल काटा,
किंतु ये भी समझिए ये कांटे जो पहुंचते हैं भीतर में ये आजकल एक प्रक्रिया करती है चिकित्सा की,
आंखों प्रेशर
का काम करती है, इसलिए तो जूते नहीं पहनते थे, इसलिए कांटों का अपना विकास तो नहीं होता, उसको निकालने से आंखों प्रेशर अपने ऊपर ये सब चीजें हो जाती
है। गोकुल कांटे से मेरा घाव हो गया था, जलन होता है
इसलिए खाली पैर तो थे जूता तो कोई बनते थे, इसलिए उनको रथ पर छाया नहीं के करके आप इधर बैठिए और उनसे उपमन से माने उनसे आदेश ले करके मैं जाऊँ क्या स्नान कर लू दो माता समय हो चलने का, इसलिए यहाँ का कांड में कहा की ये बात है निकट आ गए हैं दो पार हो गया, सोचा जी आप यहीं पर स्नान करके हम लोगों की विधि है भजन में तीन बार संध्या करने की, स्नान करने की विधि है तीन बार, महापुरुष तीन बार स्नान करते थे सवेरे दोपहर में और शाम को और सब कुछ में मंत्र करते, ये नहीं कि दोपहर में जब फल आ गया ना खाला गया प्रसाद का सब उस समय वे प्रसाद को देख रहे हैं और अर्थात स्वागत भी कर रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं, इससे क्या होता है
सारे सर्व दिन
ऐसा ये सब विधि नहीं है, इससे पहले स्नान करके विधिवत आचमन करके तब फिर जाओ, ऐसा नहीं प्रसाद पाने के समय या रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब प्रसाद पाते हैं खाला गया समय नहीं रहा तब उस समय दो डू यू थिंग दिस नीक ऑफ टाइम एट ए टाइम ऑफ संध्या इन मॉर्निंग वेन सन इज गोइंग टू राइज यू कैन डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त after half an hour of sunrise, not after that. If you are going in vain, and in the meantime, when sun is on the head, and in night, when sun is going to set, where there is some reddish in west, at that time, we should do it all. If you are neglecting the time, you will neglect your soul. इतने समय पर ये सब अमित भी होना चाहिए, इसलिए दोपहर में अपू जी उनसे आदेश दिया, अब मैं जाऊँ क्यों? इनमें ये भावना थी कि मैं इनका चाचा न हूँ, तो चाचा प्रेम से कहते हैं ये भगवान है, उनको भगवान का बोध था, ये कृष्ण साधारण है, ये भगवान है, और ये राम कौन है? अनंत देव है, उनके आराध्य के भी आराध्य है ये। इसलिए उनसे आदेश लेकर के निवेश करो, तो रथ पर जाकर के बैठो। उन्होंने कहा कि आप लोग बैठिए, यहाँ कोमल गति है रथ के ऊपर में, और नीचे कठोर भूमि है, कांटे हैं, गोकुए हैं, छाया नहीं है यमुना के किनारे, इसलिए छाया में ये ऊपर बैठी है, और वहाँ पर धनुष पानी से आदि अस्त्र हैं, और वो लोग भी आ नहीं सकते, कोई आक्रमण करने वाले आएंगे भी तो वो लोग कुछ कर सकेंगे प्रतिकार, इसलिए बैठा करके काली व्याहता स्नान विधवत आकर कृष्ण से कर करके उतरे, और जमुना के जहाँ पर उस घाट होता है, तो घाट वहाँ था नहीं, जमीन कुछ कटा हुआ, उसके नीचे और थोड़ा सा नीचे, उसके और नीचे नीचे चले गए, और जमुना में उन्होंने स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम किया जमुना जी को, और विधवत आचरण स्नान किया। विधवत माने क्या है? तेल लगा करके और कूद रहे और सपा वो तैरने लगे, कुल्ली फेंकने लगे, ये सब नहीं। आप लोग जानते हैं हमारे वक्रेश्वर पंडित को कि कौन से पुंडरीक विद्या, दिन में कभी नहीं जाते थे गंगा तट पर या जमुना तट पर, रात में जाते जब कोई नहीं होता, किसी को ध्यान शक्ति कर रहा है, किसी कोई कुल्ला शौच कर रहा है, कोई कुल्ला करके ऐसे जमुना में फेंक रहा है, स्नान करते समय ऐसे ऐसे करते कुल्ला पे, ऐसा मतलब उनकी कृपा के लिए बस घट से एक या दो तीन झुटकी लगाई चले आओ, ये सब विधवत आचरण है। आचरण करके उनको प्रणाम करो, उसका स्थान पहले तब उनकी उनका जल यहाँ पर धारण करो, ये यमुना जी कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की क्रिया है, ये कृपा करें हमें। निमज्जय तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातन भावेव दिव्ये अपूर्वो रामकृष्ण समन्वित, यमुना में स्नान दुखी लगा, दुखी लगा करके पानी में देखा, जब जपने लगे अपना कौन मंत्र, ब्रह्म सनातन, ब्रह्म सनातन कौन, ओम सहस्र सीता पुरुष, ये का मंत्र जपने लगे, जपने लगे सनातन, ये सनातन पुरुष हैं, कृष्ण जो रथ में बैठे थे, जब ही डुबकी लगाई और मंत्र जपते जपते देखा क्या, अरे रथ से उतर सके हमारे जल में ही वो आ गए राम हो, जैसे बैठे 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 थे, मोर मुकुट तो था नहीं, और रास्ते में तो उनको सोने का मुकुट भी नहीं मिलेगा, बंसी हाथ में तो थी नहीं, और जो ब्रज के जो भाव थे वो तो मैया यशोदा के यहाँ या किसी शक्ति के यहाँ रखा है, कहाँ पर ब्रज में रखा, इसलिए उस समय शंख चक्र गदा पद्मा या उसमें इसके भी कुछ नहीं, ब्रज का भी भाव नहीं, अभी आ गए हैं तटस्थ स्थल पर, ब्रज का यही भाव जो था यही पर छोड़ दिया, और जल में उनके पास में पहुंचे किस रूप में, देवी और वसुदेव के रूप में, और वहीं से अपना रथ पर जो बैठे थे वो उनके भीतर उनको जो दर्शन दिया वो कौन थे, वसुदेव नंद और नंद और यशोदा के जो पुत्र थे पर अलग थे रूप में, इसलिए अपूर्व जी के साथ में कृष्ण और बलदेव जी जो रोहिणी नंदन राम और यशोदा नंदन या राधाकांत हैं वो नहीं थे, पर दुख की लड़ाई अब इसी बीच में वो लौट गए, उनको पता ही नहीं चला। और फिर स्वर्ग पर आकर के देखा, जब उसे अरे वो तुम वहीं पर बैठे हैं और हमने किसको देखा, ये कैसे देखा, अच्छा तो हमने समारोह कैसे देखा, आंख नीचे ले लगे, कहीं हमने स्वप्न देखा, जैसे आज हमने समय को ठीक ठाक है स्वप्नों को संस्था नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, सावत एवं दर्द से अश्रु लो रामकृष्ण और समन्वित हो, अंदर में देखा, फिर बाहर में देखकर उठ के खड़े हुए, सौ रथक सौ खत्म ही, रथ के ऊपर भी जब उठ करके खड़े हुए और वहां से जरा ऊंचे पर से बैठे थे इसलिए नीचे से उठ करके थोड़ा सा ऊपर देखा, अभी वहां पर बैठे हैं। तो ये कैसे हो गया कि वे रथ पानी के अंदर में दिखे और उधर रथ पर भी बैठे हैं, तीन भक्त, ये कैसे संभव हुआ। बहुत सोच में पड़ गए, खाने या कुछ नहीं समझ सके। सुता आनंद दंड है, आनंद दंड है, मैंने क्या यहाँ आनंद दंड है, मैं किसको कहते हैं बस देखो। और इनके पुत्र को देखा, वो जो नंदनंदन से थे जसुदा नंदन, वो तो और इसीलिए इस शब्द के द्वारा ये जपला है कि वो वहां पर जो जल में देखा ये कौन था, और फिर वही निकल करके अब रथ पर बैठ गए, देखा कि वही रथ पर बैठे थे तो वो थे नहीं, पर ही सिर्फ क्षण क्षण मैंने रथ अरे तभी रथ पर कौन बैठे हैं वो जो भी चले गए न मध्य दर्शन देखे तो जल थी, ये क्या बात। फिर डुबकी लगाई और वहां आंख खोल करके देखा, क्या अब इस बार दूसरा चीज देखा, क्या अनंत देव को देखा, अपने इष्टदेव को जो पहले जीवन का पलन कर रहे थे, शस्त्र फणाए हैं, शस्त्र देवता लोग सब उनकी आराधना कर रहे हैं, श्री भू नीला इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं उनसे सम्मानित देखा, यहाँ तक कि प्रहलाद जी उनको हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार इत्यादि कर रहे हैं, जितने देव साधु हैं सब नमस्कार कर रहे हैं, देखकर के आश्चर्य, ये क्यों देखा। फिर देखा क्या, अनंत देव के गोदी में देखा, उसके भीतर मैंने देखा वो श्यामल चतुर्भुज एक मूर्ति है, अद्भुत रूप, शंख चक्र गदा और नाक असंख्य सुंदर, गला असंख्य सुंदर, कपोल इतने सुंदर, चतुर्भुज रूप है, सोने के मंडप आभूषणों से परिमंडित है, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया, ये क्यों ऐसा हो रहा। अब इसकी चर्चा हम कोई करने वाली